नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे प्रोग्राम माइंड मैटर्स में। आप जानते हैं कि हम अपने पिछले दो एपिसोड से डॉक्टर गिरीश पटेल से चर्चा कर रहे थे स्वमान के बारे में। स्वमान यानी सेल्फ एस्टीम। जैसे कि आप जानते हैं, हमने बात की कि सेल्फ एस्टीम आजकल मनुष्य में बहुत लो होती है। लो सेल्फ एस्टीम के क्या कारण है, उसका निवारण कैसे हो सकता है, इसकी कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक क्या है, उनके बारे में हमें डॉक्टर साहब ने बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी दी। बट क्या आप जानते हैं कि ये सेल्फ एस्टीम या स्वमान, जैसा कि ये दो शब्दों से बना है, स्व का मान, इसके अंदर एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रहस्य भी है। तो वह आध्यात्मिक रहस्य क्या है? क्या स्पिरिचुअलिटी या क्या रिलीजन हमारे स्वमान के विकास में हमारी मदद कर सकता है? आज इसी कुछ गहराइयों के कुछ पहलुओं को हम टच करेंगे डॉक्टर गिरीश पटेल के साथ। डॉक्टर गिरीश को हमने अपने स्टूडियो में फिर आमंत्रित किया। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब से हम पहले जानना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आपने हमें स्वमान के विकास के लिए कई अच्छी अच्छी टेक्निक्स बताई, स्व का मान, तो इस स्व के अंदर एक स्पिरिचुअल सेल्फ आ जाता है, स्पिरिचुअलिटी आ जाती है, एक रिलीजन का एक स्पाइस आ जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी का भी सेल्फ एस्टीम को डेवलप करने में, स्वमान का विकास या उसको बैलेंस करने में कुछ रोल होता है?
बिल्कुल, डेफिनेट रोल है। और देखेंगे कि सबसे अच्छा रोल तो स्पिरिचुअलिटी का, अब तक जो हमने और साइकोलॉजी की बातें डिस्कस की वह भी मदद करेगी।
लास्ट,
हाँ गुड, लास्ट इज बेस्ट इन फैक्ट। कि स्पिरिचुअलिटी से बहुत सारे चेंजेस आते, मैं शॉर्ट में पहले तो चेंजेस आपको बताता हूं कि स्पिरिचुअलिटी से आपकी जो स्पीड ऑफ थिंकिंग है उसको आप कम कर सकते हैं। आज लोग इतना फास्ट सोच रहे हैं सारे। मैं सोचता हूं टेंशन, एंजाइटी और जो प्रॉब्लम्स है उसका कारण है कि व्यक्ति आज बहुत ज्यादा सोचने लगा है, बहुत फास्ट सोचने लगा है। दूसरी बात है कि स्पिरिचुअलिटी से हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। एक एटीट्यूड अपने आप के प्रति, औरों के प्रति भी जो एटीट्यूड है, अपने जीवन के प्रति एटीट्यूड है, उसमें परिवर्तन आता है।
इससे पहले आप ये दूसरा पॉइंट इलैबोरेट करें, मैं को एक प्रश्न आपसे पूछना है कि आपने बोला आज के इस युग में, गतिशील जीवन में लोग बहुत फास्ट सोचते हैं, क्या आप नहीं समझते कि हमारी लाइफस्टाइल ही इतना फास्ट हो गया है कि हमें फास्ट थिंकिंग करनी चाहिए? फास्ट थिंक, क्योंकि इंस्टेंटेनियस डिसीजंस आज, जैसे कोई सिचुएशन आती है, कोई थिंकिंग थॉट प्रोसेस है, वो बहुत फास्ट हमें लेना होता है। मुझे लगता है कि फास्ट थिंकिंग के साथ एक्सेसिव थिंकिंग या वेस्टफुल थिंकिंग है, उसे हटाना
चाहिए। ठीक है, भी एक्सेसिव थिंकिंग है, वेस्टफुल भी है, नेगेटिव को भी हटाना है, लेकिन फास्ट को भी मैं सोचता हूं कि एटलीस्ट उन्हें मे बी कि भी वास्तव में अपने कंट्रोल में होना चाहिए। कि भी आपकी कार की स्पीड अगर आपके कंट्रोल में है,
फास्ट चलाएं, लेकिन
हाँ, अगर प्रॉपरली एक्सेलेटर पर आपका पैर है कि जब जरूरत है फास्ट स्लो भी करो, लेकिन जीवन में ऐसा नहीं होता है। जीवन में आज जब व्यक्ति फास्ट सोचने लगता है, फिर जब उसे स्लो डाउन करने की जरूरत है, वो स्लो डाउन नहीं कर पाता है। आध्यात्मिकता वहां आपको मदद करती है,
जहां ब्रेक लगाना है वहां ब्रेक,
ब्रेक नहीं लगाने की। आज ब्रेक फेल है वास्तव में, देखो तो लोगों की फिजियोलॉजी में भी ये देखा गया है कि भी हमारी यहां सिंपैथेटिक सिस्टम ही काम कर रही है। पैरासिंपैथेटिक सिस्टम जो ब्रेक के रूप में कार्य करती है, वो ब्रेक ऑलमोस्ट हमारी आज फेल हो चुकी है। इसके कारण बहुत सारे साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। और एक जो बात है एटीट्यूड के अलावा, कि बिलीफ सिस्टम में भी आध्यात्मिकता से परिवर्तन आता है, तभी स्वमान बढ़ेगा। ये तो जो हमारे अपने आप के प्रति बिलीफ है कि भाई मैं अच्छा नहीं हूं, मैं ये ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो हमेश के लिए वही रहेगी। और एक जो सबसे अच्छी बात मैं समझता हूं जो स्पिरिचुअलिटी से आती है, कि हम सजग हो जाते हैं, जिसको कहेंगे कि अवेयरनेस। आप बिल्कुल ही जागृत होते हैं, अवेयरनेस के साथ सब कुछ करते हैं। जब आप अवेयरनेस के साथ करते हैं, तो एक भी अगर हीनता का विचार आ रहा है तो तुरंत उसे हम परिवर्तन कर सकते हैं। और एक जो बहुत बड़ी बात है कि स्पिरिचुअलिटी से परमात्मा की भी हमें शक्ति मिलती है, एक परमात्मा का सपोर्ट जिसको कहे। मैंने कहा भी माता पिता नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, उसके कारण ये सारे प्रॉब्लम अराइज हो रहे हैं। तो परमात्मा के द्वारा अगर हमें इंस्पिरेशन मिले, उनका एक व्यक्ति सपोर्ट प्राप्त कर ले, तो भी सेल्फ एस्टीम बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ सकती है। एंड अल्टीमेट इज मेडिटेशन, कि मेडिटेशन का अभ्यास, प्रैक्टिकल जो अभ्यास है, वह भी हमारे विचारों में परिवर्तन लाएगा, डीकंडीशनिंग भी करेगा। आज जिनमें भी लो सेल्फ एस्टीम है वो कंडीशनड हो गए, उनको कितना भी समझाओ। कई बार साइकोथेरेपी में भी मैंने देखा है कि 10 सेशन भी ले लो, उनको कई बातें समझाओ, लेकिन व्यक्ति घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि मैं अच्छा नहीं हूं। जब व्यक्ति मेडिटेशन करने लगता है तो यह बात उसमें आ जाती है कि विचारों में परिवर्तन आता है और अल्टीमेटली स्टेप बाय स्टेप इवन कहीं बार तो मैंने ये भी देखा है कि भी हाउ स्पिरिचुअलिटी हेल्प्स यू कांट आंसर। जब जब भी लोग मुझे मिलते हैं तो हमेशा मैं उनको ये बात पूछता हूं कि भी कैसे आपको स्पिरिचुअलिटी से मदद मिली। तो कहीं किस्सों में तो ये भी देखा है कि भी कहते नहीं सचमुच हम चेंज हो गए। हाँ पहले तो एकदम हिंसा में जीवन जी रहे थे, है ना, जीने के लिए मरने के लिए जी रहे थे शायद, लेकिन अभी आध्यात्मिक जीवन बन गया तो इतना उत्साह आ गया, उनके चेहरे पे भी परिवर्तन आ जाता, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते क्योंकि इट्स एन इंटरनल प्रोसेस। आज हम लेफ्ट ब्रेन को यूज कर रहे हैं, मोस्टली वी आर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट। स्पिरिचुअलिटी से हम राइट ब्रेन को भी यूज करना सीखते हैं। जब आप अपना राइट ब्रेन यूज करने लगते हैं तो विच इज इंट्यूटिव, नो विच हैज फीलिंग्स, विच हैज ऑल्सो इमोशंस, तो इन सभी बातों को उसमें हम ऐड करते जाते हैं और अल्टीमेटली होलिस्टिकली हम अपने ब्रेन को यूज करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेल्फ एस्टीम अच्छी होने लगती है। देखो हमें ना दो शब्दों का उपयोग करते हैं बार बार कि मैं और मेरा, हाँ मैं ये कहूंगा कि ये मेरा चश्मा है, हाँ मैं हमेशा पहनता हूं, सारा दिन पहनता हूं, लेकिन सोने के समय तो निकाल दूंगा, तब भी ये कहूं कि भी नहीं मैंने सारा दिन पहना है मुझे नहीं निकालना है, तो वह गलत होगा। तो जैसे हर बातों में आप देखो कि भाई मेरा बेटा और मैं डिफरेंट हूं, तो इस दोनों का अगर भेद, मैं समझता हूं स्पिरिचुअलिटी में सबसे जो एसेंशियल बात है कि मैं को मेरे से अलग कर, और यह सिर्फ हम साइकोलॉजिकल लेवल या आध्यात्मिक लेवल पर नहीं, अगर हम मेडिकल दृष्टि से भी सोचे तो आज बहुत सारे ओपन माइंडेड न्यूरोलॉजिस्ट भी है कि जो भी इस बात को स्वीकार करने लगे हैं कि हमारा मस्तिष्क ही सब कुछ नहीं है। मस्तिष्क को कितना भी हम गहराई से समझने की कोशिश करें तो भी जो हमारी भावनाएं हैं, मन से संबंधित जो बातें हैं, उसका जवाब नहीं दे सकते। और उसके कुछ बहुत ही अच्छे जो लोग हैं, एक है डॉक्टर वेल्डर पेनफील्ड, दूसरे है डॉक्टर रॉजर स्पेरी, जिन्होंने भी काफी काम किया इस विषय में। और बहुत ही अच्छी बात मैं समझता हूं, इस मनो जो न्यूरोलॉजिस्ट थे उन्होंने करीब अपनी आधा जीवन इस बात पर दे दिया, वह है लेट प्रोफेसर जोहेंसी एकल्स, जिनको नोबेल प्राइज भी मिला था मेडिसिन में। उन्होंने तीन किताबें लिखी है, उनकी पहली किताब है फेसिंग रियलिटी, मतलब कि रियलिटी क्या है, ब्रेन सब कुछ नहीं है। दूसरी उनकी किताब थी अंडरस्टैंडिंग ब्रेन, कि भी दिमाग को हम समझे कि दिमाग कैसे कार्य करता है। उसमें भी यही बताया कि दिमाग सभी जो हमारे मन से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकता है। और तीसरी किताब तो सीधा उन्होंने हिट किया है टारगेट को, तीसरी किताब का उनका नाम है सेल्फ एंड इट्स ब्रेन, अर्थात कि भी स्व अलग है और ब्रेन उससे डिफरेंट है। तो ऐसे न्यूरोलॉजिकल लेवल पर भी हम ये समझते हैं मैं और मेरा वह भिन्न है।
साइंटिफिकली भी और स्पिरिचुअली भी आप देखा जाए, अब इलेक्ट्रोड स्टडी से और अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से प्रूव कर चुके हैं कि एक एग्जिस्टेंस है सेल्फ की या स्पिरिचुअल बीइंग की हमारे अंदर, जिसे कहते हैं सोल, बड़ी सीधी बात की जाए तो आध्यात्मिक शक्ति, जिसे साइकी या सोल का रूप दिया जाता है। और आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बताया कि अगर हमारे सभी दर्शक बार बार एक चीज बोल के देखे कि मैंने ये अपने हाथ से किया, मैंने अपने ये पैरों से किया, मैंने अपनी आंखों से देखा, तो ये शब्द हम सभी लोग रोज यूज करते हैं, तो इसमें मैं कौन है और ये मेरा कौन है। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, तो मैं कुछ और है। आप सभी भी सोचकर जरूर देखिए कि मैं आखिर है कौन।
मोहित आपने बहुत अच्छा कहा, जो इलेक्ट्रोड्स की बात है, ऐसे ही स्पेशल पैट स्कैन्स लिए गए ब्रेन के, डॉक्टर रामचंद्रन ने इस पर किया है काम, और उन्होंने देखा कि जब लोग मेडिटेशन करते हैं, कोई आध्यात्मिक विचार करते हैं, तो एक स्पेशल फ्रंटल लॉब का एरिया है जो इल्यूमिनेट होता है, जिसको उन्हें कहा गॉड स्पॉट। उसमें कोई भगवान ऐसी बात नहीं, परंतु जब आप परमात्मा के बारे में सोचते हैं तब वह एरिया इल्यूमिनेट होता है। तो सचमुच जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे में कोई ऐसी चेतना है जिसके बारे में हम और कहीं रिसर्च से, जैसे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, स्टोरीज ऑफ रीइंकार्नेशन, जिन्हें अपना पूर्व जन्म याद आया है, इन सब से हम इस बात पर तो लॉजिकली आ सकते हैं। परंतु अभ्यास में समझ, तो एक अभ्यास हमारे सभी दर्शक अच्छी तरह से करें कि मैं को मेरे से अलग कर दो, कि जैसे मेरा घर, मेरी ऑफिस नहीं, मेरी पत्नी या पति, मेरा हाथ नहीं, मेरी आंखें, इन सब से मैं भिन्न हूं, बस इस बात में आ जाओ। कि मैं वह दिव्य चेतना हूं जिसको कोई ना कोई रीत से जन्म से हमने सुना है परंतु इस बात का कभी अभ्यास नहीं किया,
जिस चेतना को आत्मा का नाम भी दिया गया है या स्पिरिचुअल बीइंग का नाम
कहा गया।
तो डॉक्टर, जब हम इस मैं और मेरे को अलग करते हैं, क्योंकि ये एक फैक्ट ऑफ लाइफ है, सभी लोग इसको मानेंगे भी चाहे लोग इसको एक्सेप्ट इजिली करें, लेकिन ये एक फैक्ट है, तो इस मैं की ऐसी क्या क्वालिटीज है? कुछ ना कुछ, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज होती है उसका नेचर बियॉन्ड एवरीथिंग होता है। हम लोग सभी इस शरीर के भान में रहने के, देह अभिमान में रहने के आदि हो गए हैं, तो उसकी ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली स्वमान, जो रियल सेल्फ है मैं का, जो मैं रियल सेल्फ है उसका मान ऑटोमेटिकली बढ़ा जाता है।
एक सिंपल कॉरोलरी से इस बात को हम समझ सकते हैं कि जो पानी का मूल गुण है, पानी का मूल गुण है पानी ठंडा है, परंतु जब पानी अग्नि के संपर्क में आता है तो वह गर्म होने लगता है, लेकिन फिर से अग्नि से उसको दूर कर दो, 3-4 घंटे के बाद क्या होगा, फिर से ठंडा होने लगेगा। तो ऐसे ही आज जो हम सेल्फ के क्वालिटीज को देख रहे हैं कि वर्तमान में जो मानव टेंशन में आ गया है, एंग्जाइटी बढ़ गई है, डिप्रेशन आने लगा है, ईर्ष्या आ गई, द्वेष, क्रोध है, ये सब विकृतियां बढ़ रही है, वो उसकी ओरिजिनल क्वालिटीज नहीं है। ये क्वालिटीज कब आई? कि जब आत्मा शरीर के संपर्क में आई, न केवल संपर्क में आई, अपने आप को शरीर मान के ही हम सब कुछ करने लगे,
बिल्कुल उसकी विस्मृति हो गई, ओरिजिनल क्वालिटीज को भूल ही गए।
और जब अगर आप इसको ओरिजिनल स्टेट में आए कि भी मैं आत्मा शरीर से अलग हूं, है ना, जैसे पानी को अग्नि से अलग कर दिया, ऐसे आत्मा को शरीर से आप भिन्न करो, सिर्फ सोचो, तो वो चिंतन भी बस एक सेकंड में, पानी को तो ठंडा होने में 2-4 घंटे लगेंगे, लेकिन शांति का अनुभव करने में, अपनी मूल और गुणों का अनुभव करने में बस एक सेकंड लगती है, कि वह आप फील करो, उसे सचमुच मानो, अनुभव करो, इमीडिएटली आपको सभी गुणों का अनुभव होगा। और मूल रूप से 7 गुणों को समझना चाहिए कि आत्मा के मूल 7 गुण है, कि सबसे पहले तो आत्मा ज्ञान स्वरूप है, नॉलेज है आत्मा में, वह जो ये सारा चक्कर वहीं आया क्योंकि नॉलेज खत्म हो गया, हम यही मानने लगे कि मैं ये शरीर हूं। दूसरा है आत्मा में ही शांति का अखूट भंडार समाया हुआ है, जितनी हम सोच नहीं सकते, कभी कल्पना नहीं की हो, इतनी शांति हमारे अंदर है। तीसरा है आत्मा प्रेम से भरपूर है, चौथा है आत्मा में सुख समाया हुआ है, पांचवा आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है, छठी बात है कि आत्मा पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र है, इसीलिए सभी को शुद्धता अच्छी लगती है,
जी हाँ बिल्कुल, पवित्रता हर एक को,
और सातवा है आत्मा में अथाह शक्ति है। आज हम सबको पावर चाहिए, परंतु सच्चा जो पावर है वो तो आंतरिक पावर है, जो अपने आप को, अपने कर्मेंद्रियों को, मन बुद्धि और संस्कारों पर जो कंट्रोल दिलाता है वह सच्चा पावर है। तो ये शक्ति भी आत्मा है, तो ये 7 गुण है।
डॉक्टर साहब, ये जो आपने 7 गुण बताए, मैं समझता हूँ कि अगर हम मैं को एकदम अलग ही कर दें, ओरिजिनल सेल्फ में, ओरिजिनल नेचर में आ जाए, तो ये 7 गुण कितना उच्च हमारा स्वमान है, हमारा मान जो कहाँ है, और हम किस स्वमान में अपने आप को, लो सेल्फ एस्टीम में हम लोग रखते हैं, क्योंकि आत्मा का ढूंढ रहे हैं, शांति ढूंढ रहे हैं, शक्ति ढूंढ रहे हैं, प्यार ढूंढ रहे हैं, हर चीज हम बाहर ढूंढते हैं, और ये सारी क्वालिटीज हमारे अंदर ऑटोमेटिकली है। और एक लॉजिकल चीज जो मेरे दिमाग में, मेरे विचारों में आ रही थी अभी, कि आत्मा सोल जिसे हम कहते हैं, ये एक परमात्मा की संतान मानी जाती है ना, परमात्मा की। और आप एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, आत्मा को किसी भी शास्त्र, किसी भी धर्म में परम शरीर नहीं कहा गया है,
बिल्कुल हाँ।
परमात्मा को हमेशा परम आत्मा ही कहा जाता है, परम शरीर नहीं कहा जाता। अगर वह परम शरीर होता तो हम भी शरीर होते, तो ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर वह परम आत्मा है, सुप्रीम सोल है, तो हम भी ऑटोमेटिकली उसके बच्चे आत्मा ही है, बोलिए। और ये स्वमान आते ही कि मैं स्वयं परम पिता परम आत्मा का बच्चा, एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ, ये स्वमान ही अपने आप में एक बहुत ऊंचा स्वमान हो जाता है, एक ऐसा कि जो हमें अभी भी खुशी आती है अंदर से,
मैं अच्छा हूँ,
एक अच्छा अंदर से लगता है।
और ये भी हमारे में तो आ सकता है कि भी मैं बहुत अच्छा हूँ,
बहुत अच्छा,
अगर ये बात है, ये बात दोनों है, तो ऑटोमेटिक स्वमान है।
और मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब, की जो आत्मा का परमात्मा से मिलन, इसी को मेडिटेशन की प्रक्रिया है जो कहा जाता है, और जो हमें यथार्थ स्वमान मिले जाती है।
रियलिस्टिकली स्पीकिंग मोहित, ये इतना सिंपल है कि आप स्टेशन पे खड़े खड़े भी मेडिटेशन कर सकते हैं, बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, तो भी आप उस मेडिटेटिव स्टेट में जा सकते हैं। सिर्फ आवश्यकता है कि विधि को हम एक तो समझ ले और फिर थोड़ा सा अभ्यास करें, क्योंकि ये हमारी ओरिजिनल चीज है। और जब ओरिजिनल चीज शुरू में हो सकता है क्योंकि हमने खो दी है, परंतु एक बार अनुभव हो जाए तो बड़ी इजीली आप सारी टेक्निक का अनुभव कर सकते।
मेरे को लगता है आप जैसे आपने क्लैरिफाई किया कि डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि जो यथार्थ चीज है, जो हमारी एक्चुअल पहचानों से हम भूल चुके हैं, और जो चीज हम इतना भूल चुके हैं उसको बार बार नेचुरल अपने अभ्यास में लाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है।
दैट ओनली इनिशियली,
दैट इज ओनली इनिशियली, या उसके बाद नेचुरली उसी स्थिति में आ जाएंगे तो इट विल बी अ वेरी
इजी प्रोसेस।
एक्सेप्ट कैसे करी जाए?
मेडिटेशन के पांच स्टेप्स है, पांच स्टेप्स को हम समझ ले तो बड़ा इजी होगा। सबसे पहले है इंटरनलाइज, दूसरा है चैनलाइज, तीसरा है विजुअलाइज, चौथा है डिविनाइज और पांचवा है रियलाइज। क्या करना है? फर्स्ट तो है कि वी गो विधि ना, इंटरनलाइज करना है। आज हमारा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल बना है, बाह्य चीजें कंट्रोल कर रही है ना। हम चांद पर जाके वापस आए परंतु एक इंच भी हम अंदर नहीं जा सकते, तो मेडिटेशन में हम शांति से बैठ के इंटरनलाइज करते हैं,
बाहर चीजों को हटाते हैं।
फिर सेकंड स्टेप है उसे हमें चैनलाइज करना है।
तो आप समझ रहे हैं कि जैसे जैसे डॉक्टर साहब बताते जा रहे हैं, हमारे दर्शक भी बैठे और इस पर एकदम गहन विचार करें, एकदम अपने सोच को दूर।
बिल्कुल भल शायद हो सकते हैं कि अभी ध्यान ना भी कर पाए लेकिन उस स्टेज में जा सकेंगे, एक प्रिपरेशन हो जाएगा इस दौरान भी कि हमें चैनलाइज करना है, अर्थात कि मन और बुद्धि को मोड़ना है। सबसे बड़ी गलती जो मेडिटेशन में हुई है कि लोग यह समझते हैं कि जब हम ध्यान करते हैं तब हमें कुछ नहीं सोचना है, मन विचार शून्य हो जाना चाहिए, परंतु न तो यह आवश्यक है और न पॉसिबल है, पॉसिबल भी नहीं है और आवश्यक भी नहीं। क्योंकि जब आप यह भी जो सोचना कि मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए, वह भी तो एक विचार है ना, तो इसलिए विचार उल्टा आप सोचेंगे मन में नहीं विचार आना चाहिए, ज्यादा विचार आएंगे। परंतु मेडिटेशन में मन को आपको मोड़ना है, आत्मचिंतन की ओर मोड़ना है। जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया मैं और मेरा, तो मैं के बारे में आपको चिंतन करना है कि कैसे मैं वह एक अनादि दिव्य चेतना हूं। तो इसके कारण यह जो चिंतन है उसका चित्र भी निर्माण करो कि मैं आत्मा तो कैसी, मैं आत्मा एक सूक्ष्म स्वयं प्रकाशित ज्योति हूं। मस्तिष्क के मध्य में वह दिव्य ज्योति का अगर हम चित्र निर्माण करें तो तुरंत ही उस बात का अनुभव होने लगेगा। फिर परमात्मा के बारे में भी वह चिंतन करे और चित्र भी निर्माण करे कि कैसे, मैं हमेशा कहता हूं साइंटिफिकली कि भगवान वह एक स्पिरिचुअल लेजर का सोर्स है। जैसे कोई भी आजकल लेजर से सर्जरी भी होती है, उसका सोर्स होता है, तो वह परमात्मा ज्योति बिंदु है परंतु वह सोर्स है, उनसे मुझे ये सारे गुण शक्तियां मिल रही है, विजुअलाइज भी करे। चौथा है डिविनाइज कि उसमें दिव्यता को भीड़ा, तब गहराई का अनुभव होगा और दिव्यता आएगी तब फीलिंग्स भी आ सकेगी। क्योंकि मेडिटेशन की ये जो आत्मा परमात्मा को हम देख नहीं सकते परंतु अनुभव करना है, और अनुभव कब होगा? जब उसमें आप दिव्यता को भी डालेंगे, जिसको कहेंगे कि हम उसमें खो जाना है। और फिर है रियलाइज, और आप डिविनाइज करेंगे तो उसका अनुभव भी कर सकेंगे, तुरंत ही शांति का अनुभव होगा, न्यारेपन का अनुभव होगा आपको, अतीन्द्रिय सुख का, पवित्रता का अनुभव होगा। यह भी अनुभव होता है कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, तो ऐसे अनुभूति वह इसका अंतिम।
चलो, बड़े प्रैक्टिकल और सिंपल स्टेप्स। और मैं सोच रहा था कि मैं आपके समक्ष बैठा हूं, इनको सुनते सुनते भी एक एक्सपीरियंस में हम जा रहे थे बिल्कुल, और हमारे दर्शक भी इससे बहुत फायदा उठाएंगे। डॉक्टर साहब, ये जो स्टेप्स आपने बताए इसके लिए कोई ना कोई प्रैक्टिकल, क्योंकि ये तो एक प्रैक्टिकल यूटिलिटी टूल हुआ, लेकिन कोई थियोरिटिकल नॉलेज भी, आत्मा और परमात्मा का ज्ञान, ऐसे कहां ये नॉलेज आपने प्राप्त की, ऐसी किस तरह आपने इसको
फॉलो? बिल्कुल आपने ठीक कहा, मैंने तो शॉर्ट में बताया इसके पीछे जो सारा बैकग्राउंड नॉलेज है, वो नॉलेज हो तो पांचों स्टेप्स को फॉलो करना इजी है। और ये ब्रह्मा कुमारी इसके राजयोग सेंटर्स पर बस सिर्फ एक घंटे का समय देना है, और थोड़ा ही टाइम, तीन दिन से करीब सात दिन के अंदर आप अच्छी तरह से इस विधि को सीख जाते हैं।
निःशुल्क है क्या ये?
निःशुल्क भी है और वहां अभ्यास भी कराया जाता है
जी।
सिर्फ ज्ञान नहीं देते परंतु प्रतिदिन उसका अभ्यास भी कराया जाता है और ये बिल्कुल निशुल्क है, इसीलिए क्योंकि तभी सभी उसका फायदा ले सके। दादी प्रकाशमणि जो ब्रह्मा कुमारी के चीफ है वो हमेशा कहते हैं कि नॉलेज इज विस्डम, और ये जो ज्ञान है उसके ऊपर प्राइस टैग लिखी हुई नहीं होनी चाहिए।
हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें एक डीप स्पिरिचुअल जर्नी कराई। मैं समझता हूं हमारे दर्शकों ने भी इसका बहुत बेनिफिट लिया होगा। तो आपने देखा कि सेल्फ एस्टीम एक छोटी चीज नहीं, इसके अंदर बहुत गहरे स्पिरिचुअल आध्यात्मिक रहस्य समाये हैं। आप सबसे हम इजाजत चाहेंगे, नमस्कार।